अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। अंगशामलिच्छटाधिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जड्डञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितम् गुरु गौरांग की कृपा से आज भी हमारी निर्विघ्न रूप से परिक्रमा संपन्न हुई। आज सवेरे निधुवन राधारमण गोकुलानंद जी राधा गोपीनाथ इन सबका दर्शन हुआ और वहाँ उनके संबंध में आप लोगों ने सुना। निधुवन के संबंध में लो बोलो निधुवन के संबंध में श्रीमान महाराज भक्ति विष्णु वैभव महाराज जी बतला रहे। हेलो
beautiful high pastimes and also end of the night classes, next week I am Nishant Vikra, it was there. So one time Shrimati Radhika, she was sleeping in the lap of Sri Krishna. That time she had a dream. In that dream, she saw that very beautiful laughing boy, young boy was dancing expectantly. And he was calling Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He was dancing with all his associates and tears were flowing from his eyes. Because that boy was, it seemed that he was celebrating the whole world by his tears. His hair was standing on his head. Sinchal, Sinchal, Naya Paisan, part of the latest example. Kuchal, Kuchal, Kutimaura, Devani, Shams, Kato, Kuchal, Kanan, 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 Kupinda, Ahi, Nago, Dora, Kupi, Kuchal, Yehri, Mahu, Mahana, Chakasi. And when he was saying, Hare, it seemed that he was calling Shrimati, he was calling Krishna, he was in the mood of Krishna calling Shrimati Radhika. And when he was saying, Ram, Krishna, it seemed that he was in the mood of Radhika and calling Krishna. So, surprised by this, and Radhika was quite attraction for that boy. So, Radhika, when she woke up, she told Krishna that today I had a dream. In that dream, tonight I had a dream, and I saw in the dream, he was a very attractive boy, and he even attracted my heart. So that's very surprising, because Radhika's heart is not attracted by anyone except Krishna. So that time, Krishna, what he did, on his chest, there was actually very effulgent, very effulgent vastu as well. And that Vasu Vajjal actually shown the brilliant of his chest. Within that Vasu Vajjal, Sri Krishna showed the same form of Chaitanya Mahaprabhu, dancing very effectively. And then again it was seen that Chaitanya Mahaprabhu was dancing there, seeing that Radhika had been amazed. And Krishna told that in Kali Yuga, I will come in this form. I will go on the earth and I will distribute them far and wide. That time, all the gopis, including yourself, will join me to have it in the male form. It is not appropriate to join in the female form in Kali Yuga. Kali Yuga people are very fallen. Kali Yuga Shukriya is a portion of pods. Therefore, you all should join me in the female form and will engage in ecstatic kirtan. Another history about Vidurbal was that one time in Narayanpuri, began to narrate the pastimes of Raj to Krishna. And Krishna and Balaram and Subhadra, they all developed a desire to go to Raj.
I cannot understand why he speaks.
Subhadra went actually to the palace of Yashoda. And there she met Yashoda and she came to console Yashoda. However, Shrimati, however, Sri Krishna, he went to Vidhuvan and there Srimati Radhika was lamenting in separation of Krishna. Actually, she was almost on her 10th step, almost like very close to dying. She was sitting there lamenting, Hasto Dari Vinayana Kapoor Pale, Rashna Tadokta Sarita Sarita Manaya, Prasthana Mundra Dina Vani Madhavasya, Vidra Lokita Yasaro Vahasya. She was not sleeping. She had kept her chin on her hand and she was waiting for Krishna. It was not known whether she was alive. Because from taking her pulse, it could not be known whether she was alive. So therefore, the only sign of her existence was that a small, little cotton ball, little cotton sock was kept near her nostrils. And from that little movement of that cotton sock, it was realized that she was alive. So, she had complete detachment from eating. She had complete detachment from all sense gratification. Her eyes were focused on her nostril. And it was not very clear whether she was a yogi or yogi. Are vidam samasta vishaya grame vyuttipa nakshatre nayanam yaditavam
yachayanamana
maunam chitakita vishyamatmane vishwamaharate
yatam
yasati yosundar kaupamprabhu.
Oh, he is here or here? Yes.
So we see that I'm Krishna not came there.
I saw him today.
Huh?
I saw him today.
That, oh, here he is. Krishna has come here.
Checking.
Hearing that Radhika again, she actually came back to consciousness. So this was, this pastime took place in Vidhuvan. So all this, this is the heart of Vrindavan, where Krishna's all desires are fulfilled. among all the pastimes of Sri Krishna, that this Ras Lila pastime is the highest. So, in this pastime, Sri Krishna danced extraordinarily with all the gopis. Lakshmi Madhya Yatena, Valaya Vistala Nathma, Kasturi Sunati Vilasa Bhagi, Vinyas Bhaktanuna, Vira Kanto, Mandalena Parito, Krishna Krishna Krishna, from Bhagavisha Shankar Sankalapada, Paya Jnayadi. That Sri Krishna, who was in the middle of all the gopis, and all those gopis surrounded Sri Krishna, and it was like in the middle of so many beautiful jewels, there was a blue sapphire Sri Krishna who was dancing with the gopis. So this Nirvana is the ecstatic place of Sri Krishna's Rasa Lila, Naisha Lila and Nishanta Lila.
Can you speak Radharaman? Very easy. Tridandi Maharaj, Radharaman.
I first of all offer my Nanda Bhaktanamsa to my most beloved Gurudev, Om Vishnu Pai Paramahamsa Sutra Raja Vacharya, Asloka Sri Himachira Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj. And the same again unto the Tridandi Gyan Sannyas and all the Vaishnava Vaishnava Vedas of the world. So Srila Gurudev has asked me to say something in brief about Radharaman. All these temples that we're going to in Sevakunj, as we just heard, are the heart of Vrindavan. These days that we're going through now are such special, auspicious days. All the most confidential pastimes are being revealed, which we're hearing. Very sacred, special stalis, every place. And this Radharaman is no less than any of these others. The principal personality in Radharaman, besides Radharaman himself, of course, is Sri Gopalbhatta Goswami. Sri Gopalbhatta Goswami was one of the youngest of the Goswamis. He came from South India, his father Venkatabhatta, his uncle Prabodhananda Bhatta, and Tirumala Bhatta. So these three personalities, and Gopalbhatta, who was serving Chaitanya Mahaprabhu when he was very, very young, maybe 4 or 5 years old. He was developing a most remarkable relationship at that time with Chaitanya Mahaprabhu. And then Mahaprabhu instructed him to remain in South India, near Sri Ranga, until his parents had left this world. And then he came to Sri Vrindavan. And here he joined Rupa Goswami, who was here at that time, Sanatana Goswami for some time. Sri Gopalbhatta Goswami was serving Sanatana Goswami. In particular, he was taking his Hari Bhakti Vilas and he was helping Sanatana Goswami, just as Jiva Goswami was helping Rupa Goswami with his Bhakti Rasamrita Sindhu and so many other works. So Gopalbhatta was serving Sanatana Goswami in his way. Gopalbhatta had one very beautiful shalagram, and he had been given so much ornaments, cloths and jewelry, and at one point in his life he was lamenting something, oh, I want to decorate my Thakurji the same way as Gopulananda is being decorated, Radha Govinda is being decorated, Madan Mohan is being decorated. He was feeling this inspiration in his heart. And at that time, of course, Sri Radharaman, in the form of the Shalagram, heard his desire. And at that time, in the night, just in one night, he manifested the most exquisite form that we see today of Radharaman. This very beautiful form, all features very clearly defined. So Gopalbhatta was in total bliss and satisfied, and he decorated that deity so beautifully. So in this, just behind this Radharaman temple is the Samadhi, the full Samadhi of Srila Gopalbhatta Goswami. So when we take shelter of Radharaman, we're considering this beautiful pastime of the manifestation of this deity from the desire of Gopalbhatta Goswami. This is one of the principal temples of Vrindavan. All these temples that we've been visiting are the principal temples of Vrindavan. So this Sri Radharaman is a very powerful place for us to take shelter and beg the mercy of Gopalbhatta Goswami, and to understand this relationship between Gopalbhatta Goswami and his Thapoji. How special was that relationship? So this seva has been carried on very nicely from that time. And he is the with Sanatana Goswami, he's representing this Sambandha Gyan.
Thank you. निर्वाण में राधारानी और गोपियों के साथ में कृष्ण का रास हुआ, विशाखा को प्यास लग गई तो उन्हें अपने वेणु से एक सरोवर पैदा किया जिसको विशाखा कुंड कहते हैं। सेवा कुंड में ललिता कुंड है, यहाँ पर विशाखा। कुछ दिनों के बाद में यहीं पर निर्बाध संप्रदाय के हरिदास जी को राधा बंक बिहारी विग्रह मिली। पहले वहां स्थापित थी, पीछे मंदिर में बन जाने के बाद में यहाँ पर आ गई। दूसरी बार एक दिन राधा जी ने स्वप्न देखा और कृष्ण से कहा, प्रिय हमने एक स्वप्न देखा कि वृंदावन है, यमुना नदी प्रवाहित हो रही है, निकट में गोवर्धन पर्वत है, वहां पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोयले कुहक रही हैं, और देखा है एक सुंदर ब्राह्मण कुमार, बहुत ही सुंदर, वो नृत्य कर रहा है और कभी कभी हे कृष्ण कहता है और कभी कभी हे राधे कहता है। जब वो हे कृष्ण कहता है, मुझे मालूम होता है ये मैं ही कह रही हूँ, और जब हे राधे कहता है तो मुझे मालूम होता है कि आप ही वो कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन ब्राह्मण कुमार है। कृष्ण ने कहा, कृष्ण कुछ मुस्कुराने लगे और बोले, जैसे मैं तो नहीं जानता जो ब्राह्मण कुमार है। राधा जी ने कहा, जी हमको तो मालूम होता है कि आप ही थे। कृष्ण बोले, जी हाँ प्रिया मैं ही वही था, वही हूं। तुम्हारा स्वप्न ठीक है, मैं कलयुग में तुम्हारे भावों को आस्वादन करने के लिए ब्राह्मण के रूप में आऊंगा, ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और तुम्हारी भाव कांति, अंग कांति और भाव दोनों को लेकर के उसका आस्वादन करूंगा, और तुम भी ब्राह्मण के रूप में, हमारे परिकर जितने हैं वहां पर पुरुष के रूप में सब आएंगे तुम्हारे परिकर। इस तरह से राधिका जी ने कहा, जी हाँ हमारा ये स्वप्न ठीक है। तो ये वहीं पर हुआ था। राधा गोकुलानंद जी आज तुमने कहीं कुछ बोला?
आज
नहीं बोला।
Jupiter is expected to be too. speak about Sri Radha Gokulananda temple and here. Radha Gokulananda, in the courtyard first, we see the samadhis of Sri Loganath Das Goswami, Sri Narayana Thakur, and Sri Vishnu Thakur Thakur. Sri Loganath Das Goswami, he was a very close friend of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu instructed him to go to Vrindavan. And Narayana Thakur, Loganath Das Goswami, he went to Vrindavan, and he, before the six Goswamis came, and with Sri Bhugarbha Goswami, whose samadhi is in the courtyard of Sri Radha Dalada temple. They associated very closely and said they were like one soul and two bodies. Bhugarbha Goswami is so called because he performed bhajan in a hole in the ground. So Loganath Das Goswami was here. He had taken a vow that he would not accept any disciples. But when the three, Prabhu Troy, Sri Srinivas, and then Narada and Vishwamananda came. So Narada Thakur had a very strong desire that he would be disciple of Sri Loganath Das Goswami. So he began to serve. We've already heard how Narada Thakur was serving Sri Loganath Das Goswami by cleansing the place where he was passing school. And after some time, Loganath Das Goswami hid himself to find out who was doing this. He caught hold of Narottam Thakur. Narottam, although he was performing such a menial task, he was actually son of a king, coming from a very, very rich and opulent family. But he put his heart at the lotus feet of his beloved Gurudev and prayed that his Gurudev would, that Loganath Das Goswami would accept him as disciple. So Loganath Goswami accepted him, gave him Diksha. Then, after some time, Narada Thakur and Loganath Das Goswami, they were chanting Harinam. And a farmer came, very thirsty. So he asked Loganath Goswami for water. Loganath Goswami simply continued chanting. And then he asked Narada Thakur. So Narada Thakur stopped chanting, put aside his beads, he gave water to the farmer, and then continued chanting. After this, Sri Loganath Das Goswami said, "You're not fit to be here. Don't you know that if you're serving Harinam, you're serving anyone, everyone. There's no need to stop your chanting to perform welfare activity." So apparently very harsh, he sent Narottam Thakur away. But actually he was sending Narottam Thakur away for preaching so that he could bless the whole world with his very wonderful preaching. After Narottam Thakur, three generations after Narottam Thakur, Srila Vishnu Thakurita Thakur was performing bhajan in Vrindavan. So his samadhi is also there in the courtyard there. So Srila Vishnu Thakurita Thakur is a very great acharya, very rasik. He wrote Sri Krishna Bhavanamrita, and also a very great scholar. So many, some of his purports, he's explaining in a very wonderful way how Saraswati, for example, is sitting on the tongue of Hiranyakashipu when he's chastising Prahlad, sitting like this, explaining in a very beautiful way the hidden purports. He's written a wonderful commentary on 10th canto of Srimad Bhagavatam, Sarada Darshini. And our Gurudev has quoted from this in his commentaries on Sri Gopiki, for example. In the temple itself, on the altar, there's Radha Vinod, the deity of Sri Loganath Das Goswami. So Loganath Das Goswami, he manifested Radha Vinod. Sometimes it's said that a Brahmana came again, sometimes it's said that he found the Kunda. So Radha Vinod was very eager to accept service from Sri Loganath Das Goswami. He said, spoke to Loganath Goswami, he said, "I'm very tired, please give me somewhere nice to rest." So Loganath Goswami gave him a nice bed. And then he said, "It's very hot, you should fan me." So Loganath Das Goswami was fanning the deity. He said, "I'm hungry, I want something to eat." So Loganath Das Goswami immediately prepared some nice pork for Krishna. He said, "Chutney is needed." So then in this way he was ordering, very, very sweet, wonderful, miraculous relationship between Chilonkantas Goswami and Radha Vinod. So Radha Vinod is there on the altar. And then there's also Radha Gopulananda of Krishna Chakravarti. Tiny little him. He used to carry around his beat bag. And also on the altar is the deity of Sri Baladeva Jagutsan Prabhu, who is the very beloved, dear beloved disciple of Srila Vishnu Chakravarti Thakur. And then there's the small Gopinath Srila of Srila Raghunath Das Goswami.
गुरुदेव जिस धर्मशाला में हम लोग रुके हुए हैं ना, जिस धर्मशाला में हम लोग रुके हुए हैं, ये लोग भी वहीं रुके हुए हैं। तो हमने इनको आपके बारे में बताया, ये कहाँ पर हैं, ये कलकत्ता के हैं। तो इनको जिज्ञासा हुआ, बोले हम आपसे आपके गुरुजी से मिलना चाहते हैं, तो ये आपसे मिलने के लिए आए हैं।
तो अभी इस समय में मिलेंगे कैसे, बातचीत कैसे होगी?
नहीं, थोड़ा सा दर्शन के, बोले दर्शन तो करा दो एक बार।
কোথা থেকে এসেছেন?
হুগলি জেলা।
হ্যাঁ,
হুগলি চন্দননগর।
আচ্ছা, ভাব আমাদের নদীপে মঠ আছে, চুচুড়ো মঠ আছে।
চুচুড়ো মঠ আছে, চুচুড়ো তোমার বাড়ির কাছে।
হ্যাঁ, ঠিক আছে, পরে কথা, এখন তো কথা হবে।
জি, রাধা গোপীনাথ বাংলা ভাষা নেই,
যমুনার জল বালিকে সাইড করে নিয়েছেন আর ওইকে মন্দিরটা প্রভাব বলেন আর বলু আর পরমানন্দ ঠাকুর ওইটাকে আর বলু পন্ডিতকে দিয়েছেন আগে বংশীবতে পাঁচ অর্চন মতো আর এখন নতুন মন্দির করেছে আর ওইখানে স্থাপন হয়েছে আর সাল ওই ঠাকুরটা আর জয়পুরে চলে গেছে যখন মুসলমানের রাজা
আমরা মাধুর্য কাদম্বিনী কালকে কল হমনে পাঠ কিয়া কি ভক্তি দেবী সব প্রকাশ হ্যাঁ ভগবান জেসে সচ্চিদানন্দ হ্যাঁ ভক্তি ভী স্বপ্রকাশ কৃষ্ণ জেসে যদুবংশ মে কৃষ্ণকে রূপ মে রঘুবংশ মে রামচন্দ্রকে রূপ মে প্রকট হতে হ্যাঁ স্বেচ্ছা সে কিসিকে দবাব সে কিসিকে কারণ নেই আপনি আপ জব ইচ্ছা হতি হ্যাঁ তো আতে এসে ভক্তি দেবী হি স্বতন্ত্র আপনি ইচ্ছা সে যাহা ইচ্ছা হো অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিকে হৃদয় মে ভি আ সকতি হ্যাঁ পরম বুদ্ধিমান উত্তম কুণ্ড মে জন্ম দিয়া হুয়া সদাচারী ব্যক্তিকে ভি হৃদয় মে নেই আ সকতি ইয়ে উনকি ইচ্ছা পর নির্ভর করতা হ্যাঁ অব ও বতলা রহে হ্যাঁ ভক্তি কিসি কর্ম কে যোগ কে জ্ঞান কে তপস্যা কে অধীন নেই হ্যাঁ যদি কোই অচ্ছা কর্ম করেঙ্গে তো ভক্তি হোগি নেই ইসলিয়ে কহতে হ্যাঁ গ্রন্থকার শ্রী চক্রবর্তী ঠাকুর জি ভাগবত কে শ্লোক মে অভি কলবনে বতলা যদৃচ্ছয়া যদৃচ্ছা মানে কেন স্বেচ্ছা আপনি ইচ্ছা সে প্রকট হতি হ্যাঁ ইস শ্লোক কি শ্রীধর স্বামী নে ব্যাখ্যা কি হ্যাঁ যদিচ্ছা মানে কা কেন যদিচ্ছা কেনাপি ভাগ্য উদয়েন কিসি ভাগ্য সে যদিচ্ছা কা শব্দ কা অর্থ হ্যাঁ কিসি ভাগ্য সে ইস ব্যাখ্যা কে অনুসার মে শুভ কর্ম সে ভি এক ভাগ্য কা উদয় হতা হ্যাঁ আর এক ভগবান কি কৃপা সে কুছ ভক্তি সম্বন্ধী ভক্তি ধাম সম্বন্ধী কুছ সুকৃতি উদয় হোনে সে ভি ভাগ্য হতা হ্যাঁ অতএ ভক্তি কা কারণ যদি মান লিয়া যায় তো তো ভক্তি কর্ম কে অধীন হো পড়তি হ্যাঁ या भगवान के कृपा के अधीन हो पाती है उसकी स्वतंत्रता नहीं रही इसलिए ग्रंथकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं केना कि भाग्य उदयन यहाँ ऐसी व्याख्या नहीं करनी होगी जैसा कि श्रीधर स्वामी जी ने कहा है इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी जदिच्छा মানে মহৎ সঙ্গ মহৎ পুরুষক সঙ্গ সে হি ভক্তি উৎপন্ন হতি হ্যাঁ বতলায়েঙ্গে ব্যাখ্যা করকে মহৎ পুরুষ কৌন হ্যাঁ যদি যদিচ্ছা শব্দ কা ব্যাখ্যা কিসি ভাগ্য কে উদয় সে হতা হ্যাঁ ইয়ে যদি অর্থ কিয়া যায় जब इच्छा मैंने तो स्वतंत्र स्वेच्छापूर्वक, यदि इसकी व्याख्या यदि हम कहते हैं श्रीधर गोस्वामी के अनुसार में किसी भाग्य से, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किस भाग्य के द्वारा, किस भाग्य के द्वारा, शुभ कर्म करने से एक प्रकार का भाग्य उदित होता, उस भाग्य से नहीं, कदापि नहीं। यदि शुभ कर्म जनित भाग्य को स्वीकार किया जाए तो शुद्ध भक्ति कर्म के अधीन हो जाती है, शुभ कर्म करने से ही भक्ति हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं। ऐसी दशा में भक्ति कर्म के परतंत्र हो जाएगी, ये दोष आ जाता है और स्वप्रकाश भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति को समस्त शास्त्रों में स्वप्रकाश अपनी स्वेच्छा से किसी के हृदय में प्रकटित हो सकती है, ये लिखा है समस्त श्रुतियों में, स्मृतियों में, भागवत में, सर्वत्र ऐसा ही लिखा गया है। ये हमने कल बतलाया था, ये भगवान के भांति सच्चिदानंद भगवान है और उनकी शक्ति सच्चिदानंद वृत्ति, जिसमें आनंद की प्रधानता है और संबित और संदिनी गौण रूप में है, उस वृत्ति का नाम भक्ति है। भक्ति को परतंत्र मानने से और उसकी प्रकाशिता को अस्वीकार करने से श्रुति वचनों की अवहेला होती है, निषेध होता है। द्वितीयतः उस भाग्य को शुभ कर्मों के अभाव जनित कहा गया, शुभ कर्म नहीं, बिना शुभ कर्म के ही यदि मान लिया जाए तो ऐसा होने पर भाग्य कौन, भाग्य होने का कारण क्या है, उस कारण तो चाहिए जो भाग्य हुआ, तो वो भाग्य अज्ञात रहने से वह भाग्य असिद्ध है। जो स्वयं सिद्ध असिद्ध है वो दूसरे को कारण कैसे बन सकता है, जो स्वयं ही असिद्ध है जो कौन सा है, तो भक्ति को क्या स्थापित करेगा। तृतीयतः यदि भगवान की कृपा को भगवान का उदय मान लिया जाए, जो भक्ति भगवान की कृपा से होती है, ऐसा कहा भी है भगवान की या भक्तों की कृपा से भक्ति होती है, तो फिर तब भगवान की प्राप्ति का कारण भक्ति की कृपा, तब उनकी कृपा, भगवान की कृपा का कारण क्या है, भगवान क्यों कृपा करके भक्ति उदय उसके हृदय में कराते हैं, तो फिर उसका कारण क्या है, उत्तरोत्तर ढूंढने पर कोई निश्चित कारण नहीं होने से ये भी अनवस्था का दोष लगता है। भाग्य का कारण क्या बना, ये ठीक नहीं हुआ। यदि भगवान के हैत की कृपा को भाग्य का उदय मान लिया जाए, जब भगवान की अहैत की कृपा से ही भक्ति हृदय में उदित होती है, तो इसमें दोष क्या है। ओ, भगवान सर्वथा समदर्शी है, सब जगह उनकी सब दृष्टि है, अतएव किसी पर वो दया करते हैं, किसी पर नहीं दया करते हैं, उन पर यह दोष होगा। समदर्शी होकर के किसी के हृदय में भक्ति प्रवेश कराते हैं, किसी के हृदय में नहीं, तो ये समदर्शी नहीं हुआ। इसलिए भगवान में विषमता का दोष होता है, जब भगवान ऐसे करते हैं विषम। यदि कोई कहो कि भगवान में विषमता का दोष नहीं है, क्योंकि वे भक्तों का पालन करते हैं, असुरों का संहार करते हैं। असुरों का यदि संहार करते हैं किंतु वो भी कृपा है, उसको मुक्ति इत्यादि दे देते हैं, उसका संसार नष्ट दूर करके के और मोक्ष दे देते हैं। कहते हैं दुष्टों को दमन करने में और अपने भक्तों का पालन करने में जो विषमता देखी जाती है वो दोष नहीं, बल्कि उनका महत्वभूषण है और उनके महान गुण का परिचय है। क्योंकि भगवान में भक्त वात्सल्य गुण अन्य समस्त गुणों से अधिक श्रेष्ठ है। भगवान में जितने भी गुण हैं, भक्त वात्सल्य उनमें सबसे अधिक गुण है। विशेषतः असुरों के संहार में भी भगवान की महत कृपा है, उनको मार करके मुक्ति दे देते हैं। यदि जो मुक्ति बड़े बड़े योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है वो उनको दे दिया तो ये तो बड़ी कृपा है। तो कहते हैं नहीं भाई, भगवान में विषमता का दोष लगेगा, उनको दिया क्यों भक्ति और उनको नहीं दिया, कहीं देते हैं कहीं नहीं देते, इसलिए नहीं। तो फिर तो जैसे कहा ना महत कृपा, महत कृपा के द्वारा भक्ति का उदय होता है, यही ठीक है। तो इसमें भक्ति की स्वप्रकाशकता नष्ट हो गई नहीं, इसमें अब विचार करते हैं जो उत्तम महाभागवत है उनकी कृपा, वो भी समदर्शी भगवान के समान होते हैं, उनमें भी भगवान के गुण होते हैं। इसलिए जो महाभागवत हैं सुखदेव गोस्वामी जी और ऐसे लोग हैं जो उत्तम महाभागवत हैं, उनकी कृपा से नहीं, उनमें भी समदर्शिता का दोष पहुंचेगा, जो वो समदर्शी नहीं है, उनको ऊपर में कृपा किया उनके ऊपर में नहीं कृपा किया। यहाँ पर श्रील ग्रंथकार चक्रवर्ती ठाकुर जी भगवान की भांति ही सच्चिदानंद स्वरूपा भक्ति की स्वतंत्रता और स्वप्रकर्षिकता का निरूपण करते हुए किसी सूत्र से ये बतला रहे हैं, बतला रहे हैं महाभागवतों की कृपा से नहीं होगी, किंतु मध्यम अधिकारी जो वैष्णव है सचमुच में, जो सब तत्व में प्रवीण है, भक्ति में भी अनुभूति है कुछ, अभी मध्यम अधिकार में है, उनके लिए भागवत में लिखा गया ईश्वरे तद्धैनेशु बालुशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी कौन है? भगवान से प्रेम है और भक्तों से तीन प्रकार की मित्रता जिनकी है, उत्तम भागवतों की सेवा, मध्यम अधिकारों से मैत्री और अपने से कनिष्ठ अधिकारी को अपने संग से भक्ति प्रदान करना, और जो भगवत विद्वेषी हैं उनको उपेक्षा करना। तो यहाँ पर अज्ञानी पुरुष पर वो कृपा करते हैं, ये उनका धर्म और लक्षण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में नौ जोगेंद्र के अन्यतम सिपाही हवि जोगेंद्र ने मध्यम भागवत के लक्षण में अज्ञानियों के प्रति कृपा, ये मध्यम भक्तों का अधिकार और लक्षण है। भगवत देशियों के प्रति उपेक्षा वैषम्य का स्पष्ट, उनमें वैषमता भी है किंतु ये इनका लक्षण है, इसलिए मध्यम भक्त का वैषम्य भक्ति के लिए हानिकारक नहीं है। और अज्ञानी जो पुरुष पर उन पर भक्ति देना भी ये विषमता का दोष नहीं है। क्यों? विदेशियों को भक्ति नहीं देते, देंगे किसको? जिसको भक्त। किंतु इसमें एक बात है, मध्यम अधिकारी भक्त भक्ति देता है कहाँ से? उसके अंदर में भक्ति है, इसलिए भक्ता भक्ता संजायते भक्त, भक्ति से ही भक्ति होती है। उनके अंदर में जो भक्ति है उसी भक्ति से ही भक्ति को दिया, इसलिए ये संभव पर है, इसमें कोई दोष नहीं है। जब ऐसे भक्तों की कृपा होती है तो भगवान की भी कृपा उसके अनुगामी बन जाती है। भगवान की कृपा स्वेच्छा से नहीं कर सकते, वो किस पर कृपा करते हैं? भक्त जिस पर कृपा करते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, इस पर दया कीजिए, तब वो करते हैं, अन्यथा नहीं करते, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है। यदि भली भांति विचार किया जाए तो यह समझा जा सकता है, भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान है, उसी भक्ति के द्वारा साधारण के प्रति उनकी कृपा होती है। भक्ति है और भक्ति का लक्षण ही है, परिचय ही है, चित्त को द्रवित कर देती है दूसरों का दुख देखने से, इसलिए उनके हृदय में भक्ति होने से दूसरों का दुख देखते हैं। अनादि काल से जन्म जन्मांतर से संसार चक्र में ये फंसा हुआ है, इसलिए इनको किस प्रकार से सहायता करके भगवान की सेवा में नियुक्त की जाए। इसलिए नारद ऋषि घर घर जाकर के प्रचार करते थे, सुखदेव गोस्वामी बिना बुलाए ही परीक्षित महाराज जी की सभा में आए, चैतन्य महाप्रभु बिना खड़ाऊं बिना जूता सारे भारतवर्ष में भ्रमण करके लोगों को हरिनाम दिया, उनका कल्याण किया। ये भी भगवान से उतरकर, भगवत्ता से उतरकर मध्यम भागवत में आकर के ये काम किया। नारद जी लोगों पर कृपा करते हैं, मध्यम अधिकार में उत्तम भागवत है, उतर करके तब दया करते हैं, और उनकी दया होने से भगवान की भी दया हो जाती है। इसलिए भक्ति का हेतु भक्ति ही है, इसलिए दूसरों के ऊपर में वो परतंत्र निर्भर नहीं है, उसी भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न हो गई।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय शारदे कृष्णाय कृष्णवंताय त्रिभक्ताय नमो नमः। So we continue in some Sri Krishna Chakravarti Thakur as Madhurjika Padabhini. So we were hearing just as Sri Krishna appeared in the Garud dynasty of Garud Maharaj, and as Sri Bhagavan Ramchandra appeared in the dynasty of Raghu, by their own independent desire, nothing could force them to come. In the same way as Bhagavan is, then Bhakti Devi is also Sachidananda Mani, completely spiritual, and Swayichapurva, independent and Swaprakash, self-manifesting tattva. Bhakti, because she is independent, she can have independence to appear in the heart of anyone she desires. Therefore, sometimes she may appear in the heart of a very fallen person, while at other times she may not appear in the heart of a person who comes from a very good family and who is expert in all types of sadachar or Vedic behavior. Therefore, Bhakti, because she is the same as Bhagavan, independent, she is never controlled or dependent upon the processes of karma, jnana, yoga, or the performance of austerities, or the giving of charity, etc. Bhakti is never caused by good karma, sukkarma. Otherwise, her being established as being an independent tattva would experience some loss or diminution. Then last night, we discussed two verses from the Bhagavatam where Bhakti is described as being Gyanichaya, or being independent. Here, Sri Siddhartha Swami has explained that the appearance of Bhakti has two causes. That it is caused either by performance of good activity, pious activity, sukha karma, or it's dependent upon the mercy of Bhagavan or something in relationship to Bhagavan. That these two things are the cause of the good fortune which causes the arousal of devotion. But Sri Vishnu Chakrati Thakur here has refuted these ideas of Sri Siddhaswami. He said we cannot accept that the performance of pious materialistic activities, sukha karma, can be the cause of good fortune which causes the arising of devotion. Because the performance of sukha karma or good activities, this is one type of karma. Then how we can understand that bhakti has now become subordinate to karma? That means the independent nature of bhakti will have been destroyed. Then we cannot accept this cause. Therefore, Sri Krishna Chakrati Thakur now gives a deliberation on what is the cause of that good fortune which enables bhakti to awaken within the heart. So, if Sri Bhakti is now considered to be dependent on the performance of pious activities, then a fault will come in the nature of bhakti itself. Then bhakti cannot be claimed to be swaprakash or independently manifested. All the Shrutis, the Srimad Bhagavat, the Upanishads, and the Puranas have all declared very boldly that bhakti is also Satyananda, composed of eternality, knowledge, and bliss. Last night we heard when Ladini Shakti or the Ananda potency is prominent in the heart, and some Dini and some Big Shaktis take a secondary position, then this condition is called Bhakti Devi. Then we cannot say that Bhakti has an immaterial cause, otherwise all scriptures will be faulty. And performance of pious activities is a material cause. Therefore, firstly, we cannot accept pious activities as a cause of good fortune which causes the arousal of devotion. Secondly, someone may argue then maybe an absence of pious activities may be the cause of good fortune, but we cannot accept that also. Because an absence of good activities, this is one type of lacking, incompleteness. Something which is incomplete, how it can be the cause of something which is complete? Swaprakash, that is Bhakti Devi. In other words, what is not complete, an absence of pious activities, how it can cause something which is complete? Bhakti Devi. Then we cannot accept this second point also. Thirdly, if someone argues, well, bhakti is caused by the mercy of Bhagavan, when Bhagavan gives mercy, then bhakti appears in the heart. But we cannot accept this point also. Why? Because if the mercy of Bhagavan is the cause of good fortune, then we cannot see that good fortune in everyone. Some people have bhakti, and some people do not have bhakti. Therefore, someone may say, if bhakti is dependent on the mercy of Bhagavan, everyone does not have bhakti, that means Bhagavan likes some people and doesn't like other persons. Then the fault of partiality can be applied to the character of Bhagavan himself. But we cannot accept this because in scripture everywhere it's Srutam Sarvabhutanam, Krishna is equal to everyone. Therefore, the mercy of Bhagavan even cannot be said to be the cause of the good fortune which causes the arousal of devotion. Then, if someone may say that indeed Bhagavan must be partial because he kills demons and protects his devotees, is this not a form of partiality? Then Sri Krishna Chakrati Thakur says no, there is no partiality within Bhagavan. His killing of the demons is actually a form of great mercy. Because the demons that he kills, he gives them liberation, and that liberation is very difficult to achieve even for perfected yogis. Therefore, Bhagavan's killing demons and giving to mercy to Bhagavan, mercy to the devotees, there is no path, we cannot see this partiality in him because everything he does is auspicious for everyone, including the demons and the devotees. Another point, there are more the qualities of Bhagavan than his quality of being affectionate to his devotees, or Bhakta Matsalyabhava. This resides on his head like a jewel. Of all the qualities of Bhagavan, his affection to the devotees is his crest jewel of all his qualities. So, in conclusion, then what is the cause of the good fortune which causes the arousal of devotion? It cannot be said to be good activities, it cannot be said to be a lack of good activities, it cannot be even said to be the mercy of Bhagavan. Then what is it? Sri Krishna Chandravati Thakur says, the cause of that good fortune is Mahakripa, the mercy of Uttambhaya, the mercy of a pure Vaishnava. In saying this, the self-manifesting nature of bhakti is not lost because bhakti comes from bhakti, bhakti samjatiya bhakti. So one more point is there are three levels of Vaishnavas, Uttambhagavat, Madhyambhagavat and Kanishka Bhagavat. A Mahabhagavat is also like Bhagavan, he is equal to everyone. He does not discriminate between any different types of person. Therefore, even the cause, even the mercy of Mahabhagavat cannot be said to be the cause of devotion, because everyone does not have devotion. There was Vishnu Chamadi Thakur. He quotes the definition given of a Madhavani Kavi from one of the Namayugendras, Sri Kavi Maharaj. He says the symptom of the mercy of Madhavani Kavi, this is the cause of devotion. A Madhyamanikari, he is expert in Tantrajnana and also he has some realization of bhakti itself. The Madhyamanikari has four qualities, as stated in the 11th canto of Bhagavatam, Iswarthara Dhinishu, Valisenta Kripatiya, Namamaiti Kuromichara Yakuroti Samadhi Maha. The Madhyamanikari has four symptoms. What is that? He has Iswarthana Dhinishu. He has turned towards Bhagavan. He serves the devotees who are superior to him and he gives mercy to those who are less than him and he neglects the envious. Therefore, the Madhyamanikari acts on the platform of Maitri. Maitri means friendship. To the Uttambhagavat, he has Maitri with Seva, friendship with a feeling of Seva. Towards the Madhyamanikari, he has Maitri, feelings of friendship mixed with feelings of friendship. And towards the Krishna Vikari, the Madhavani Kari has Maitri Kripa. It's friendship and dharma, feelings of mercy. Therefore, the Madhavani Kari, he avoids the envious, niyapeksh. Then someone may say, is this a partiality in the Madhavani Kari? It's true, it's a partiality. But neglecting of the demons is not a fault in the Madhyamani Kali because this is his symptom, it's his dharma, therefore it cannot be said to be a fault. Therefore, in conclusion, the Madhyamani Kali, they give devotion. Why? Because they can give devotion, because the Madhyamani Kali has devotion himself. So, the Madhyamani Kali gives mercy to the ignorant and avoids the envious persons. Therefore, because Bhagavan is controlled by the devotion of his devotee, then the mercy of Bhagavan only follows the mercy of a Madhyamanikari devotee. Because Bhagavan is not independent, therefore Bhagavan's Krishna is also not completely independent. It's dependent on the mercy of his devotees. To that person whom the devotee extends his mercy, then Bhagavan also extends his mercy. So, the devotee, he is very kind, he is endowed with all good qualifications. So the bhakti in the heart of devotion, that bhakti in the heart of the devotee, that bhakti manifests mercy to another person. Therefore, bhakti's independence is not lost. So the Madhyamanikari, when they see the suffering of the conditioned souls in this world, who have been bound since time immemorial, the cycle of birth, death, old age and disease. When they see the suffering of those souls, their heart melts and they want to help that jiva. How do they help them? By joining them to the service of Bhagavan. Therefore, we see so many devotees achieve mercy by the mercy of great souls like Narada Muni, the preachers everywhere, like Sri Sukadeva Goswami, who attended the assembly of Krishna Maharaj without being invited. Sri Satchananda Gaura Hari, who toured the whole of India without shoes and distributed Harinam in the houses of everyone. Therefore, the conclusion, the Madhyamali Kari gives mercy, then Bhagavan gives mercy in the form of devotion. Draw Brahmanandi.
इतना शेष श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भक्ति के प्रकाश का कारण भक्ति ही बतलाया, किंतु भक्तों के हृदय में जो भक्ति होती है उसी कृपा से ही किसी को भगवान की भक्ति मिलती है, इसलिए भक्ति से भक्ति ही हुई। दूसरी बात, भगवत कृपा होना कठिन है, वे तो सब समय आनंद में मग्न रहते हैं, आनंदमय अभ्यास, उनको फुर्सत कहाँ है ये सब सुनने और देखने की। संसार का कोई भी दुख उनको स्पर्श नहीं करता, तब जो महत्पुरुष होते हैं व्यक्ति मुक्त हो जाने पर भी या जीवन मुक्त होने पर स्वप्न की भांति उनको याद रहता कि ये संसार में हमने दुख भोगा, इसलिए दुख उनके हृदय में ये होता है कि हमारे समान ही जैसे मैं था ये सब लोग संसार के दुखी हैं। करोड़ों जन्म से कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी कुछ ये होते हैं, कभी जानवर, कभी वृक्ष, कभी पर्वत के रूप में आते हैं, कभी स्वर्ग और नरक में जाते हैं। देख करके उनका चित्त द्रवित हो जाता है, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान की प्रार्थना से उनका चित्त भी कुछ द्रवित होता है, ऐसे नहीं। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी भगवत भक्तों की ही प्रधानता रही, भगवान की कृपा स्वतः नहीं होती, भक्तों की कृपा की अनुगामिनी होती है, पीछे पीछे चलती है। जैसे दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर के पास में गए और चक्र से रक्षा करने की बात कही, उन्होंने लोगों ने निषेध कर दिया, इनकार कर दिया। नारायण के पास में गए, उन्होंने कहा मैं तो भक्तों के परशवशीभूत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनको अपना हृदय दे दिया है और उन्होंने अपना हृदय मुझे दे दिया है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, तुमको उपाय बतला सकते हैं, जाओ अम्बरीश के यहाँ जाकर के क्षमा मांगो, तभी तुम्हारा उद्धार हो। भगवान ने कृपा नहीं की, अम्बरीश के पास में भेजी, अम्बरीश तो बड़े दयालु लोग, उनको जाते ही क्षमा कर दिया। इसलिए भगवान भगवत भक्तों के कृपा के ऊपर में ही भगवान की कृपा। दूसरी बात, भगवान इतने दयालु हैं, नारद जी ने नकुल कुबेर के पुत्रों को, नल कुबेर और मणिग्रीव को अभिशम पाद दिया, वृक्ष हो जाओ। उनके चरणों में पड़ने से उन्होंने कहा अच्छे त्रेता द्वापर युग में कृष्ण आएंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब देखो उन्होंने भगवान से तो कुछ प्रार्थना की नहीं, किंतु भगवान ने कहा जी नारद जी ने ऐसा कहा इसलिए हमको उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि नारद जी ने सर्वस्व अपना हमारे चरणों में सौंप दिया है, इसलिए उनकी बात को हमको पालन करना पड़ेगा। इसलिए नंद कुमार और मणिगुण का भी मुक्ति दिया। इस प्रकार से देखते हैं कि भक्ति का कारण भक्ति ही है, किंतु मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं उन्हीं की कृपा से ही भक्ति होती है। बहुत प्रमानंदे तुम्हें बोलो कहाँ ना जी कान मलेंगे तुम लोग करता नहीं है तुमको बोलो
So, another reason why Bhagavan himself cannot be the cause of bhakti, because Bhagavan has no understanding, he has no understanding of the unhappiness of Jesus in this material world. Why? Because Bhagavan is such an Anamaya, he is composed of ecstasy, and how he can understand the suffering of others. He cannot. Therefore, like a person who has a bad dream that awakens, even though they're in an awakened state, they can remember the suffering they had in the bad dream. In the same way, a great soul, a Mukta Purush, now they're liberated, but they can have some remembrance of their previous condition, suffering in the grips of Maya. So when they see the jivas of this world, they can understand, as they are very much unhappy in Maya, I was also like that. But now doing devotion I am happy, they should also be happy. He sees the jivas are moving up and down in the cycle of birth and death. Sometimes demigods, sometimes demons, sometimes humans, sometimes insects, worms, stool. When they see that, their heart melts and they pray to Bhagavan, please bestow your mercy on them. A question comes, is it Bhagavan himself as Paramatma who inspires the devotee to feel mercy to them? No, not at all. Because Bhagavan's mercy always follows the mercy of the devotee. We see a great example of this in the Bhagavad, in the history of Dhruvasa Rishi. Dhruvasa Rishi made offense to the figure of Ambarish Maharaj. Then he ran to Shiva and Lord Rama for protection. And finally, he came to the feet of Lord Narayan, begging shelter. Lord Narayan said, Saranam Riyam Mayam, Saranam Riyam Vayam, Paket Meyyat, Anasani, Namaste, Niyajanami. I have given my heart completely to the devotee, and the devotee has given their heart completely to me. I am not independent. Ambatta, Paradanohi, Aswatam, Tadimaj, Nijadiva, Nijadiva. I am not independent. I cannot give you mercy without the mercy of my devotee. Therefore, the last Rishi had to come back to this world and beg mercy from Ambarish Maharaj, who was praying to Bhagavan to bestow his mercy upon the last Rishi. Again, we see the case of the two sons of Kuvera, Manigrih and Nal Kuvera. They have been cursed by another to appear as trees in the past times of Krishna, in Gopi Yuga. Therefore, those two boys never performed any sadhana, neither did they perform any prayers to the feet of Sri Krishna. But Sri Krishna was thinking, Nada is my great devotee, he is always at my mother's feet. I have to fulfill the words of Nada and bestow mercy on these two boys. Therefore, these two examples are proof that bhakti is caused by bhakti. Go Premanali!
Vaishnava Thakur Dayaram Sarva.
Hare Krishna. Amta Vastavi Darshane Jabo. Bhagatiya Bhaktagoner Jonno Arti Pashe Byabostha Ache. Pashe Jara Dekhashona Korben. Ajit Haldar, Ek Nombor Bar. Ajit Haldar, Ek